po' più spazio.
अंतर आत्मा से संबंध किस करेगा? अंतर आत्मा के जो साक्षी प्रभु जो है कौन है? परमात्मा है। उनके साथ में जो राजित्व होगा तो ये हो गया दुर्यतम। और दुर्यतम नौ अध्याय का भक्ति जो शुद्ध भक्ति, किंतु शुद्ध भक्ति जो अभी रस रहित है, शुद्ध भक्ति जो है किंतु अभी रस युक्त अभी नहीं। और सर्वगुह्यतम में रस युक्त, वहां पर भक्ति की चरम अवधि मनमना भव इत्यादि, मनमना भव श्लोक में अंतिम भी है, गुह्य गुह्यता मैंने सभी कुछ। और एक तरह से वो करूं नहीं तो ये करूं, इस तथ्य को तुम लोग अपना ले। यदि गीता के संबंध में कहीं कुछ बोलना पड़े इसमें मेरी दो चार समझ करके यदि बोल दे तो बहुत ही अच्छा हो। अब हम लोग बृहद भगवतान
पूजा करते हैं आचरण, और उनकी मूर्ति में और भगवान में भेद मानते हैं और कहते हैं कि इसमें प्रभु जी का अधिष्ठान है तो काट है तो पत्थर है तो मणि मुक्ता कहने का मूर्ति, ये किस चीज की मूर्ति है? सोने की। अरे सोने की है ना, राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, सोने की मूर्ति नहीं है राधा कृष्ण। तो ऐसा ज्ञान जिनको नहीं होता इस रूप में पूजा करते हैं तो उसकी पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, वैष्णवों की निंदा करते हैं, उनके चरणों में अपराध अवज्ञा करते हैं और उसी की पूजा करते हैं तो भगवान ऐसे लोगों की पूजा को ग्रहण नहीं करते। शरीर में आत्मबुद्धि है, जल में तीर्थ बुद्धि है, किंतु वैष्णवों के चरणोगत में और उनके महाप्रसाद जो महा महाप्रसाद हो जाता है उसमें भगवत बुद्धि नहीं है। और वैष्णवों में जाति बुद्धि है, गुरु में भी जाति बुद्धि है,
नरबुद्धि
मनुष्य बुद्धि है, ये हमारे गुरु भी मनुष्य हैं, ऐसे लोग नारकी हैं। आपके खिलाड़ी आपके
आपके विष्णु खिलाड़ी
गुरु तू नरवतम कृष्ण ने जात बुद्धि विष्णु आ वैष्णव आनंद कब समय अम्ब बुद्धि
तीर्थ
अम्ब बुद्धि विष्णु आ वैष्णव आनंद सकल कल सहे
सब राम
सामान्य बुद्धि सबसे सामान्य बुद्धि नारकी का। तो जो लोग ऐसा रखते हैं उन लोगों के लिए जो सीधा में मान लें कि अभी हम लोग किसी बात के लिए झगड़ने लगे और ठाकुर जी की मूर्ति वहां है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे वो सीधा है पक्का, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई झगड़ने लगा या कोई प्रणाम किया तो उसको आशीर्वाद देने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अवज्ञा हुई नहीं? गुरु जी के सामने किसी को आशीर्वाद देना, उसको सांत्वना देना या उसको शासन करना है तुम्हें देख लूंगा और गुरु जी के सामने, तो इसका मतलब है गुरु जी को वो मनुष्याधार मनुष्य मानता है, इस सबके चरणों में अपराध है। इसलिए गुरु जी के सामने न तो किसी को सम्मान दे, न तिरस्कार करे, न कुछ करे, उस समय गुरु जी के ऊपर लिखो। ऐसे ही ठाकुर जी यदि सामने हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग यदि इनको भगवान मानते हैं तो क्या कहिए, किसी पर हम शासन करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ करेंगे? नहीं, वो सब प्रभु पर छोड़ देने चाहिए। जो प्रभु मालिक हैं वो सब कुछ चाहने वाले हैं, हम लोग कुछ चाहने वाले हैं, नहीं तो अवज्ञा मुक्ति हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अर्चन करता है तो वो अर्चन उसका बेकार है। उसी तरह से ठाकुर जी का चरणामृत है, वैष्णव का चरणामृत है, ठाकुर जी का चरणामृत है, और वैष्णव का चरणामृत क्या है? महाचरणामृत है। ठाकुर जी का प्रसाद महाप्रसाद है, और यदि सचमुच में उनका कोई प्यारा भक्त हो, सचमुच में, तो वो महामहाप्रसाद है। जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है, अरे ये वैष्णव हैं ठीक है, किंतु ये कायस्थ जाति के हैं या शूद्र जाति के, ये वैष्णव भक्त उच्च कुल के नहीं, ब्राह्मण नहीं। हमारे गुरु जी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण हैं, भट्टाचार्य सत्ताचार्य हैं। ऐसा यदि कोई समझता हो, और आपके गुरु कैसे हैं? आपके गुरु जी तो बनिया हैं कि क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं? ऐसा बुद्धि यदि गुरु में रखता है तब तो ये नर बुद्धि हो गई, उसकी अवज्ञा और उसकी निंदा हो गई। ऐसे लोग यदि अर्चन करते हैं तो वो भस्म में भी धरने के बराबर है। ऐसे सब चीजें बतलाई है। कहते हैं जैसे ये सब तो लिखा है, इसलिए अर्चन नहीं करते, कनिष्ठ अधिकारी अर्चन करते। जिनको वैष्णव का सम्मान का ज्ञान नहीं होता है, ठाकुर जी को ही ठाकुर जी करते हैं, होता ऐसा अधिक है। इसलिए शास्त्रों में सावधानी दी गई। इसका मतलब नहीं है कि अर्चन करने वाला अधिकारी ही गड़बड़ का है और अर्चन नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं है, अर्चन के बिना कल्याण नहीं होगा, किंतु इसमें जो जो दोष है उसे सावधान किया। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अर्चन मत करो, अर्चन करो, किंतु इससे इस चीजों को दूर करो। कहते हैं कि ठाकुर जी के अर्चन की तो बात ही क्या है, एक सुन को भी यदि भगवत बुद्धि से प्रणाम किया गया है, उनको भगवत बुद्धि से अर्चन किया गया, सम्मान दिया गया, तो वो सम्मान किसका होगा? भगवान का। एक कागज है इतना बड़ा, कागज का मूल्य क्या है? इतने बड़े चीज का मूल्य मान लिया कि यह 4 पैसा हो या 1 पैसा हो, और उसी के ऊपर में अपने हाथ से पेंसिल से ही एक आराधना और कृष्ण जी की मूर्ति बना ली अपने हाथ से ही, और बना करके उसी चित्रपट को ऐसा ही बना दिया है, एक भाव आ गया, कृष्ण बंसी लेकर के खड़े हैं, पैरों पर पैर रखे हुए हैं और बाएं तरफ में राधिका है। ठीक से बना नहीं, किंतु फिर भी वो एक उसे स्थान पर रख करके और उनको साक्षात्कार प्रदान किया। 2 पैसे का कागज और उसने थोड़ा पैसा लिख दिया। अब उसको जो प्रणाम करता है, ये प्रणाम कहाँ पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा? वो थोड़े कागज भगवान है या वो क्यों पहुंचेगा? बतलाओ, वो तो गया, किंतु वो कागज का टुकड़ा थोड़ा भगवान है, वो भगवान कैसे हो गया? वो राधा कृष्ण का पेंसिल का बनाया हुआ,
अब क्या विचार
है? सुनो, देखो, इसमें ऐसा समझो, भगवान अंतर्ज्ञानी है, अरे वो तो वहाँ पर एक छवि है, छवि नबी रहती थी,
नाम का नाम नबी है।
और वहाँ पर मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है, भगवान का नाम नहीं कि प्रभु आपकी हमारे ऊपर में दया नहीं, ऐसा कर सकते सत्संग करना जितना जो कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, और वहाँ पर प्रणाम किया था प्रभु आप हमारे ऊपर में कृपा, तो वो प्रणाम भगवान क्या नहीं पहुँचेगा। और जहाँ पर कि वो विग्रह भी है, मुक्ति बना दिया, काफी जो देखते हैं कि कागज के ऊपर में हमारी सभी अनुचित कर सकते हैं, और प्रणाम तो मुझे कर रहा है, हमको कृष्ण समझ करके लिए प्रणाम है, वहीं से भाव को भाव ग्राही ज्ञानार्थन ग्रहण करके, और उसको उसका पूजा जो भगवान साक्षात रूप में जो पूजा करने का फल है वो उसमें। इसलिए एक तीन को भी भगवान का संबंध ज्ञान करके, जैसे मोर पंख देखा और मोर पंख साक्षात एकदम दंडवत प्रणाम किया और उसको उठाया, सिर पर रखा, यहाँ रखा, किस लिए रखा, मोर पंख के हिसाब से नहीं रखा, वो कृष्ण का इतना प्यारा ये चीज ये मट्टी पर पंख डाल दिया है, बस कृष्ण की लीला की स्मृति हो गई और उसको पंख यहाँ रखता है, हृदय में रखता है, कहाँ रखूं, उसको कोई चीज नहीं मिलती है कहाँ रखू, भगवान सब उसके भाव को कर क्योंकि सर्वम पर जानी है, बस उसकी पूजा से विग्रह पूजा का तात्पर्य ये है। और उत्तम महापुरुष यदि एक मोर पंख को देख करके भगवान की लीलाओं की पुण्य स्मृति आ जाती है, तो राधा कृष्ण को देख करके महाप्रभु को देख करके उनकी स्मृति नहीं आई, उनको उसका साथ राधा कृष्ण स्मृति करके, जो राधा कृष्ण नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए भक्ति में घी डालना है, जो राधा कृष्ण की मूर्ति होने पर इतना सुंदर बंसी बजा रहे हैं, राधा के साथ में खड़े देख लिए हुए हैं, त्रिभुवी खड़े हैं, कैसे भंगी से देख रहे हैं, अब कभी तो भगवान का भाव नहीं आए, उन लोगों को धिक्कार। इसलिए वहां पर मूर्ति पूजा की निंदा यहाँ नहीं है, बल्कि उन भावों की निंदा है जिसको लेकर के वो करते हैं किंतु भक्ति में भी डालना है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा की तो बात क्या, एक चिंकी को भी भगवत भाव से यदि पूजा की जाए तो वो सब उसकी जितने भी मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते हैं। विशेष करके वैष्णव लोग जिस चीज को देखने से भगवत की स्मृति आ जाती है उसको भी प्रणाम करते हैं। संतों को किस लिए प्रणाम करते हैं, यहाँ के देख ले ऐसे कृष्ण वैष्णव प्रधान, वैष्णव प्रधान कौन है, जिसके देखने से ही कृष्ण की स्मृति हृदय में अपने आप आ जाती है और कृष्ण नाम अपने आप आने लगता है। एक होता है मान लिया कोई कृष्ण नाम कहने से जान बूझ करके चिढ़ता है ना, तो उसको देखते ही कृष्ण कहने लगे और चिढ़ने लग गया, अरे मत करो उसे तो लवार का नाम मत लो, तो वहां पर वो आभास हुआ चिढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। जहां सचमुच में कृष्ण का भाव आ जाए, जैसे मोर पंख को देख करके भक्तों को अपने आप भाव आ जाता है, ऐसे वैष्णव को देखने से कृष्ण का भाव अपने आप आ जाता है, वो जथा और उत्तम महापुरुष भाव रखते हैं। तो कहते हैं कि जिनके देखने से, जिनके विग्रहों को देखने से भगवत भाव उपस्थित हो जाता है, स्मृति आ जाती है, भला ऐसे विग्रह का पूजन करना कभी ये कृष्ण का भी हो सकता है, ये कभी नहीं, भक्ति में भी धारण किस्मत कभी नहीं होता। हाँ एक बात जरूरी है, यदि वो सकाम उपासना है, बहुत से लोग ऐसे पूजा करते हैं सकाम भाव वाले, जो निष्काम भाव वाले और प्रेम वाले भक्त लोग नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, बहुत सा ऐसा अवसर होता है जो सकाम भक्त वाले उसका पुत्र मर रहा है रोग से अब मरने वाला है, अब वो ठाकुर जी के दरवाजे के सामने जा सकते रोते हुए गदगद होकर प्रभु हमारे बच्चे और अंतर हृदय से लोग बोलता है और ठाकुर जी उसको बचा देते हैं बचा देते हैं। जिसको प्रेम की आकांक्षा है वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के ऐसे कहेगा साधक को उसको आंख में आंख नहीं आएगा और भाव में नहीं आएगा। इसीलिए नारद जी ने कहा वो कोई भय से कोई द्वेष से कोई स्नेह से और कोई भक्ति से हमारी उपासना करता है किंतु जो शत्रु भाव से करता है वो जल्दी तन्मय हो जाता है ना? और भक्ति भाव से तन्मय होने वाला बहुत देर बहुत विलंब लगेगा किंतु शत्रु भाव से एक सजीव एक तन्मय होता है। किंतु इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम शत्रु भाव से ही तन्मय हो, वो कह रहे हैं जब शत्रु भाव में तन्मय होने से ही इनका ऐसा हो जाता है तो भक्ति भाव से हमें समय देने क्या हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। अरे गोपियां तो काम से हो गई, यदि काम से कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव हो तो भाई प्रेम से यदि कोई करे तो फिर समय देने क्या हो जाए,
क्या
काम से साधारण लोग प्रेम है, साधारण आदमी नहीं समझता कि प्रेम क्या चीज है, काम से वो सब कुछ प्रेम काम के रूप में या प्रेम ही को एक स्त्री से काम काम भाव को प्रेम कर रहे हैं, निष्कपट रूप से ये प्रेम कर रहे हैं, कहां निष्कपट आता है, प्रेम है ही नहीं, एकदम विशुद्ध काम वो है, मोह काम भी मोह है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई यदि भगवान का किसी भी प्रकार से सकाम भाव से भी पूजा और आसन करता है तो उसकी हानि कुछ होगी, एक हानि के होगी विलंब हो जाएगा उसको असल प्रेम लाने में, इसलिए विलंब होगा। वो जो सकाम भाव से प्रभु के लिए जो प्रार्थना की थी प्रभु उसको वो चीज देंगे और उसको भोगाएंगे, ध्रुव को भोगने में 36,000 वर्ष लग गया और 36,000 बीत गया, 36,000 वर्ष के बाद में तब उनको वैकुंठ मिला, वो भी वैकुंठ कहाँ मिला, ब्रह्मांड के अंतर्गत में, और रस भरा प्रेम भरा कोई वैसी चीज नहीं मिली, जरूर कुछ उसमें भी सुख है, शांति तो है ही है, निर्विघ्नता है, कोई दुख का लेश नहीं है, किंतु अयोध्या में और ब्रज में जो प्रेम का भाव है वो उसको नहीं, इसलिए सकाम भाव वाले को कोई हानि तो नहीं है किंतु लाभ भी उतना नहीं, बहुत समय लग जाएगा और अपनी कामनाओं को पूरा करने के बाद में उसका दुख बहुत कोटि कोटि जन्म भी जा सकता है, इसलिए ऐसे कामों में मत लगाओ। तो आचरण का फल कभी भी जिस किसी भी रूप से तुम करो, कामना से करो अथवा मान लो कि किसी वस्तु से निंदा करते हुए या अपमान कर दिया अवज्ञा कर दिया तभी भगवान का अर्चन छोड़ नहीं रहा लगा ही रहा तो क्या होगा, यदि छोड़ा नहीं लगा ही रहा और बीच में अवज्ञा किया तो कभी न कभी कोई साधु जरूर आएगा दर्शन के लिए तो आएगा और देखेगा तो उसको दया लग जाएगी और उसको बड़े प्रेम से उसका बन करके उसको समझाएगा, उसका विरोधी होकर समझाने से नहीं समझेगा, इसलिए वो उसका बन जाएगा, उसकी बड़ी प्रशंसा कर देगा, बस तुम तो बड़ी ठाकुर जी की सुंदर रूप से सेवा करता है, एक बात है यदि कोई वैष्णव आए ना तो ठाकुर जी का प्रसाद देना और उसका सम्मान करना और सब बातें कहेगा समझा देगा बस उसका चित्त, क्यों अरे वैष्णव की जो निंदा किया जिस वैष्णव की निंदा किया है वो बड़ा कभी प्रसन्न हो सकता है? ये जो कोई चिंता करता है ये अपने मन के भावना के अनुसार में करता, वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव किसी का अपराधी नहीं होता। जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22,000 में मारे जाने पर भी अपराध नहीं दिया, फिर नकसपुर में इतना प्रहलाद महाराज जी को सताया तो भी नहीं दिया, मीराबाई के उसके पति और घर वालों ने उसे क्या नहीं किया, 20 तक दिया, कभी अपराध माना? कभी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनको जरा दंड देना? ये कभी नहीं। तो फिर बैठू ही नहीं है, तो इसलिए कोई सी बैठू के प्रति उन्होंने अवज्ञा की तो उसको उपेक्षा कर देगा कुछ दिन के लिए, किंतु उसका कल्याण काम ये करेगा, वो रहेगा विशेषता कल्याण। उपेक्षा कर दिया, उसे बातचीत नहीं किया, उसका दिया वो नहीं गया कुछ नहीं, किंतु उसके लिए वो प्रार्थना करता है जैसे उसका भी कल्याण है, इसलिए उसकी प्रार्थना से भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके कहते कि ये उसके लिए प्रार्थना करता है। वाह, ये तो बहुत दयालु है, बस प्रभु जी अभी भी जाते
हैं।
मान लिया किसी से किसी ने झगड़ा किया और झगड़ा करके आज खाया नहीं, तो हमने देखा कि भाई उसका मित्र परेशानंद जी है, उससे थोड़ा सा उसका मेल है, मैंने परेशानंद को बुलाया, कहा कि भाई उसको जा करके देखो कि खाया कि नहीं, तुम्हारा मित्र है, कहा जैसे तुम नहीं खाएगा तो महाराज जी भी नहीं खाएगा और तुम्हारे लिए बड़े दुखी, इसलिए तुम जिससे उसका मेल है उससे उठा लिया। तो हम लोगों का मेल किससे है? उनसे बढ़कर के तो प्रभु से और किसी से मेल है नहीं। तो वैष्णव लोग जो ऐसे होते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना जिसका मंगल, क्योंकि तो संबंध में आ गया ना, जिस प्रकार कभी हो अवज्ञा किया तो अभी नहीं के संबंध में आया, इसलिए उसको सब कहीं कहीं ऐसा होता है जो वैष्णव को क्षमा कर दिया किंतु उनकी चरणों की जो धूली है वो क्षमा नहीं करती, उसको कुछ दंड भोगाती है, जैसे कुछ व्याधि का हो जाना, अद्भुत रोग का हो जाना और किसी प्रकार का दंड, जैसे गोपाल चपाल का हुआ या और लोगों का है, गोपाल चक्र चक्रवर्ती का हुआ, हरदास ठाकुर का निंदक का हुआ या और सब जगह देखा जाता है ऐसा हो जाता है। भगवान की चरण धूलि सभी ये तो प्रार्थना कर देते हैं, यदि साधारण हुआ तब तो उसकी क्षमा कर देते हैं और थोड़े से भोगा करके और फिर उसको रास्ते पर लगा देते हैं, और यदि अपराध नहीं हुआ वैसा कठोर है, थोड़ी सी अवज्ञा की या गुरु को लघुत को देख करके विचार करके उस पर भगवान की कृपा होती है और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, रिपेंटेंस करता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, अधिकांश ऐसा ही होता है। जैसे देखो दोष किया जमलाग्नि ने, नल कुबर मणिगृह नारद जी के प्रति, भागवत में लिखा नहीं है जो क्या अपराध किया, गाली दिया होगा ये बदमाश कहां से आ गया, काले चपाते जैसे जो सब गालियां ये भी दिया होगा, मदद जैसे गाली देता है ना उनको होश रहता है, तो बदहोश थे, मदिरा पान किए हुए थे और उनमें सबसे बड़ा भारी बाधा ही ने दिया, तो कह दिया ये लिखा हुआ फंदा कहां से आ गया, ये नंग धर्म बदमा रंग में भंग कर दिया, तुझे गाली दिया होगा जरूर, और अवज्ञा की अंत संत बता, नारद जी ने सुना कभी तो कहा जिसको कांटा कभी बड़ा नहीं उसको दूसरे का दुख कैसे मालूम, ऐसा जड़ हो गया कहीं भी ज्ञान नहीं, अरे कुबेर का पुत्र होकर के जो शिव जी के अत्यंत परम भक्त हैं और मैं भी तुम्हारे बाप के यहां जाया करता हूं, तुम हमें भी बात जानते हो खूब अच्छी तरह से, अब तुमने ऐसी बात की ठीक। पृथ्वीगर्भ ने उसको शासन किया, अपने लड़के को हम कभी मारते हैं तो किस लिए मारते हैं, विशेष भावना से मारते हैं, सफल मारते हैं ऐसे जो लंगड़ा अंधा हो जाए आंख छोड़ देंगे, तो उसी तरह से शासन किया है और शासन करके उसको अनुभूति का चांस दिया है कि तुम 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष तक पेड़ बने रहो, अब तुमको उसकी अनुभूति होगी तब तुम समझेगा सचमुच नया चाहिए। किस चुके नारद जी का भी संपात था और नारद जी ने उसको अभी संपात दिया है तो नारद जी की दया लग गई, हमने मारा किसी को, किसी को मार दिया मैंने, किंतु तुरंत दया आ जाएगी, उसको मार दिया इसको, ये नहीं कि आज मैंने बड़ी बहादुरी की, इनको मार करके दुरुस्त करके खूब अच्छा करे, बस में कभी नहीं आता सोच सकता, मार करके बड़ा कष्ट होता है, क्यों कोई बात कर दिया तो जाएगा, इसलिए सोचा है जब दंड दिया तो इसको कुछ देना भी तो चाहिए जिससे प्रसन्न हो जाए, बच्चे को मार करके मैया लोला हाथ में दे देती है या खाने के लिए रो रहा है ना तो हाथ में लड्डू दे दी, वो सिसकता हुआ रोता हुआ करता हुआ धीरे धीरे चुप होकर के लड्डू ले लेगा, धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे सप्तता देगी जो भी उसे बेटा 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 कर करके मार को दिया, और फिर जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा था जिस चीज को देना नहीं चाहती थी वो चीज जिदे जीती, ऐसे ही उनको दंड दिया, दंड देकर के किंतु क्या दिया, अमूल्य भक्ति रत्न दिया, प्रेमा भक्ति बैठ प्रगति भक्ति, ऐसे साधनों का वही यहां पर कह रहे हैं कि यदि वो वैष्णव की निंदा भी करता है और क्या भी करता है, वैष्णव के परम ग्रहण किसी का अपराध ग्रहण नहीं करता, स्थानिक रूप से कुछ उसको दंड भले ही दे दें किंतु उसका उपकार जरूर करेंगे कुछ दिनों के बाद में, किंतु भक्तों में एक चीज है उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं, निंदा इसलिए कर रहे हैं भक्तों को भगवान का के साथ में क्रीड़ा करना और भगवान के साथ में सेवा देना, भगवान की सेवा करना, इसमें कोई विलंब होता है तो उसका हम नहीं करते, खुद भगवान का दर्शन करना है प्रभु मुझे दर्शन, भगवान का आलिंगन करना चाहते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के लिए लिखा, श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम बालक को देखा, पेड़ों की झुरमुट में खड़ा हुआ और त्रिभुंग भाव से बहुत बंसी बजा रहा है और महाप्रभु जी के प्रति आंखों से नामे निकल जा रहा है, ऐसे महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे खिसक रहा है, जब दौड़े तो वो अंतर्ध्यान महाप्रभु मिला, मिला किस लिए कर रहे पाया नहीं इसीलिए हम तुरंत पाना था, एक सेकंड की देरी उनसे सज्ज नहीं होती है, एक मिनट से देरी हो जाएगी सुबह में उनसे नहीं, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा दूर भागा है, जिस ढंग से ये कर रहा है इसके तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां पर सेवा करने, हाँ है इसका जन्म व्यर्थ किंतु उसकी पूजा व्यर्थ नहीं होती, किसी सकाम भाव से करे, निष्काम भाव से करे, प्रेम से करे, विशेष प्रेम से करे, जगह का फल जरूर होगा, जरूर फल, इसीलिए वो पूजा का फल तो है किंतु उसमें जो विलंब हो रहा है उस विलंब को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र में उसमें मिल जाए, जहां जहां दोष है आसन में उस दोषों को दूर करके स्थिति के साथ में सम्मान करके एक आदमी उसकी विग्रह की सेवा कर रहा है और एक आदमी रघुनाथ स्वरूप की भांति भावनामयी सेवा कर रहा है और भावनामयी सेवा करके अधीर हो रहा है, आसन में उतनी अद्भुतता जल्दी नहीं आई, अब विशेष करके यदि वैसा कोई भाव आसन में स्थूल भक्तियों का संग्रह करके सब पूजा करना पड़ता है, कोई ना कोई त्रुटि अवश्य भारी है, चाहे मानसिक हो और चाहे उसकी कहाँ का वो त्रुटि है, भोग में जो दिया गया कहाँ से आया, वो चीज शुद्ध है कि नहीं है, मन पवित्र है कि नहीं है, ये सब का अत्यंत विचार होता है। इसलिए उसमें ये सब विचार है उसमें, और नाम हरि नाम में जाए देखो तरक नहीं खाई से इसी से जैसा रखा नाम है हाँ, छोटे चलते फिरते बुटते बैठते किसी की रुचि भगवान का नाम महाफलदायक इन सब कार्यों से कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा न कहते हैं उसके कहते हैं कि बहुत अर्थन का है और कभी भी कुछ नहीं हो सकता